From the conference center at Temple Square.
Temple Square ke sammelan ke andar jo so Alex ka hai Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka 178th varshik maha sammelan hai jin ke bhashan karta maha adhikariyon aur maha pad adhikariyon se chune gaye hain aur Brigham Young Vishwavidyalay ne sangeet gayak mandali dwara sangeet prastut kiya gaya.
This broadcast is
for Prasaran ko Bonneville Communications dwara jan seva ke roop mein uplabdh kiya gaya hai bina likhit recording prerit lekhan ya anya istemal mana hai.
Dieter
F. Uchtdorf Gurjagar ke pratham adhyaksha ke dusre sarkar is sabha ka sanchalan karenga.
We welcome you.
अंत में आज शाम यीशु मसीह के कर्ज अंतिम दिनों के 178 वर्षक महासम्मेलन की दूसरे सभा में स्वागत करते हैं. प्रधान थॉमस एस मंसन जो सम्मेलन का अध्यक्ष कर रही हैं ने मुझे अल्दा उद्धव से सभा का संचालन करने को कहा. हम अपनी सभा कामनाएं सभी तक पहुंचाते हैं जो यहां उपस्थित हैं और जो दूरदर्शन रेडियो या इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं और उन सभी को जो विश्व के बिना Brigham Young यूनिवर्सिटी के एक संयुक्त गायक मंडली द्वारा इस सभा का संगीत प्रस्तुत किया जाएगा रोनाल्ड स्टेली और रोजलिन हॉल के निर्देशन में होगा जिनके साथ बॉनी गुडलक ओगन पर रहेंगे. गायक मंडली सभा का शुरुआत द मॉर्निंग ब्रेक गाएगा. एल्डर गैरी जे कोलमैन जो 70 के हैं उनके द्वारा शुरुआत प्रार्थना की जाएंगी.
Oh,
Our Father who art in
heaven, hallowed be thy name.
We
thank thee
for thy grand and glorious plan.
आपका योजना के लिए जो हमें दिया गया आपके इकलौते पुत्र के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रॉफिट्स के लिए और प्रेजेंट थॉमस एस मॉनसन के लिए जो जिसे हमने सस्टेन किया है सोलम असेंबली के द्वारा सस्टेन किया गया हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम उसके अगुवाई कर सकें उसकी कि हम हर एक प्रार्थना करें उसके लिए जो ये कार्य करे हम लोग आधार हैं सभी अपोस्टल्स और प्रोफेट्स के जो आपके कार्य को पढ़ाते हैं आपके कार्य आगे बढ़े सबके दिलों में जाए देशों में जाए आपके कार्य आगे बढ़े आपके जो डॉक्ट्रिन है यीशु मसीह का सभी के पास
जाए Now may thy brethren and thy servants build up thy church that it may be a defense and a refuge from the storms.
ताकि वो सभी के लिए अच्छी तरह से रहे सबके सुरक्षा के लिए रहे और जो परिवार सब एक हो जाए.
We ask for thy blessings upon this meeting.
सभी के साथ हो.
Or stop the mouth and stay the hand of
those who
may everyone who participates
this day be magnified in word. उनके शब्दों को बढ़ाए और गाने जो गाए हैं सब कुछ और बढ़ती हो आपके इकलौते पुत्र के द्वारा ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन
This fine choir
गायक मंडली अब गाएगी Lean on my ample arm by Robert W. Cantwell गिरजा ऑडिटिंग के प्रधान संचालक फिर गिरजा ऑडिटिंग भाग का रिपोर्ट बनाएंगे उसके पश्चात भाई एफ माइकल वॉटसन प्रधान अध्यक्षता के सेक्रेटरी गिरजा का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2007 वर्ष के लिए पेश करेंगे
Of the church for the year 2007.
Elder Dylan H. Oaks, Bara Devito ke Parishad ke fir hame sambodhit karenge.
Please.
Chaitram Siddhanta, Heart and Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka First Presidency, Pyare Bhaiyo. Jai Shri Dharam Siddhanta aur Vade ke Bhag 120 mein Ishwariya Vakam Bachan Dwara Nirdat Dharit hai, Tithes ke Pradant ki Parishad Girje ke Daan ke Kharch ka Adhikar deti hai. Ye Parishad Pratham Adhikstha 12 Devaton ki Parishad aur Adhikstha karne wale Bishoprik se bani hui hai. Ye Parishad Girje kar Vibhagan aur Sanchalan ki बजटों की स्वीकृति देती है परिषद के अधिकार प्राप्त करने के बाद के जगर विभागों ने दान का खर्च करने के लिए गिरजाघर के नीतियों और खरीदी के अनुसार की अनुमोदित गिरजे के लेख परीक्षा विभाग को सभी अभिलेखों और तरीकों के प्रवेश का मौका है जो आवश्यक है दान प्राप्त खर्च और गिरजा के समाप्ति पर के सुरक्षा पर नियंत्रणों को प्राप्त का मूल्यांकन करने के लिए जो लेखा परीक्षा की गई है उस पर आधारित गिरजाघर लेखा परीक्षा विभाग का विचार यह है कि सभी सामानों का संबंधित में जोड़न प्राप्त हुए है जो खर्चे किए गए हैं और 2007 साल की गिरजाघर समाप्तियों का अभिलेख है और उसका प्रबंध उचित लेख प्रयोग सूर्ति दी हुई बजटों और गिरजाघर नीतियों और कार्य वेदियों के अनुसार हुआ है आधारपूर्वक पेश किया गया गिरजे लेखा परीक्षक विभाग रॉबर्ट डब्ल्यू कैंटवेल प्रधान संचालक
Brothers and sisters, the first president.
भाइयों और बहनों, प्रथम अध्यक्षता ने दी गई रिपोर्ट दी जो December 31, 2007 तक की गिरजाघर की प्रगति और गतिविधि के संबंध में है. Stakes 2,790. Missions 348. Jile 618. Wards और शाखाएं 27,827. Kul Sadhista 13,193,999. पूरे समय के प्रचारक 52,686 नुक्वलोफ और तोंगा मंदिर को 2007 में पुनः समर्पित किया गया प्रमुख सदस्य जिनकी मृत्यु पिछले अप्रैल से हुई प्रधान गोनबी हिंकली गिरजे का 15वें प्रधान 97 वर्ष की उम्र January 27, 2008 प्रधान जेम्स ई फाउस प्रथम अध्यक्षीय के सलाहकार और 12 देवतों के परिषद के बहन इनेस ईगन हंटर प्रधान हावर्ड डब्ल्यू हंटर गिरजाघर के भूतपूर्व प्रधान की विधवा बहन रूथ डब्ल्यू फाउस प्रधान जेम्स ई फाउस प्रथम अध्यक्षता के भूतपूर्व सलाहकार की विधवा बहन लियन सी न्यूनश्वांडर सत्तर की परिषदों की एल्डर डेनिस पी निवेशवंदर की पत्नी बहन यूनिस के एन के एल्डर एफ आर्थर के सत्तर की भूतपूर्व सदस्य की विधवा बहन जेनत आर कैनन सहायक संस्था की महाअधिष्ठता की प्रथम सलाहकार ब्रदर रिचर्ड एल वॉर्नर रविवार पाठशाला की महाअध्यक्षता के भूतपूर्व सलाहकार
A testimony
सुसमाचार की गवाही एक व्यक्तिगत गवाही है जो पवित्र आत्मा द्वारा हमारी आत्माओं को दे जाती है सम्मिलित है परमात्मा को स्वभाव और उसके तीन सदस्य के हमारा संबंध प्रचित
and our relationship to its three members, the effectiveness of the atonement, and the reality of the resurrection. A testimony of the gospel.
Σε σας μάρκι γαβάι κισί κι γιατρά κι ρανιαν για σωστ κα γατνά για παριβάρ σαδες κε λιε πιάρ βο προβάτσαν νεχί χε. Πρέζον κίμπαλ νε σικλάια χε κι κισί σαμαί χαμ δούσρε κο σαλά δένα σρου καρτε χε το χαμάρα γαβάι σαμάπτωνετα.
Or as we consider bearing testimony ourselves.
एक गवाही सभा में एक सदस्य कहता है मैं जानता हूं कि पिता और पुत्र प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ के सामने उपस्थित हुआ था एक मेहमान सोचता है उसका मतलब क्या है जब वो कहता है वो जानता है एक मिशनरी कार्य के लिए तैयारी करता है सोचता है कि उसकी गवाही मजबूत है या नहीं एक जवान व्यक्ति एक माता या पिता का शिक्षा की गवाही सुनता है कैसे इस तरह की गवाही एक व्यक्ति को मदद कर सकता है जो सुनता है मतलब क्या हम जब एक गवाही देते हैं और कहते हैं जानते हैं कि समाचार सच्चा है उस तरह का ज्ञान की तुलना मैं जानता हूं कि बाहर ठंड है या मैं जानता हूं कि मन अपनी पत्नी से प्यार करता हूं ये तीन अलग प्रकार के ज्ञान है ज्ञान की हम अपने साथी से प्यार करते हैं नेच और व्यक्तिगत है
While not capable of scientific proof, it is still
सुसमाचार सच्चाइयों के लिए कुछ परिणाम है ये यीशु ने साइमन पीटर के गवाही के सवाल में सिखलाया कि वो ही मसीहा है
This is what Jesus taught in response to Simon Peter's testimony that he was the Christ
वो ही मसीह है वो ठंडे है साइमन बजौना क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने स्वर्ग में है ये बात तुझसे प्रकट की है अपोस्टल पॉल ने समझाया कुरिन्थियन के संतों को प्राप्त के समय उन्होंने कहा परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर की आत्मा आत्मा में हम मानुष के चीजों के मनुष्य की तरीके द्वारा जानते हैं पर मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें गर्म नहीं करता क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वो जान नहीं सकता क्योंकि उनके साथ आत्मिक स्थिति है बुक ऑफ मोमन सिखलाती है कि ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा आत्मिक चीजों की सच्चाई हमें प्रकट करेगी वो प्राप्त पवित्र आत्मा द्वारा हमें हम मन और दिल में बतलाएगा स्वर्ग पिता की योजना जो उन्हें बच्चों के लिए और उसके ऊपर सबसे महान चीज है ये कि हम प्रत्येक खुद उस योजना की सच्चाई जान सकते हैं वह किया हुआ ज्ञान पुस्तकों विज्ञान प्रमाणों और बुद्धिमानों से विचार से नहीं आता है जैसे अपोस्टल पीटर के साथ हम उस ज्ञान को पवित्र आत्मा के गवाही द्वारा जान सकते हैं पिता के प्राप्त कर सकते हैं जब हम आत्मिक माध्यमों द्वारा आत्मिक सच्चाइयों जानते हैं हम निश्चय है कि सकते कि ज्ञान पर जैसे विधान या वैज्ञानिक बिना प्रकार ज्ञान पा सकते हैं प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ ने एक बड़ा उदाहरण दिया है इस दिव्यदर्शी से जो दुख उससे मिला उन्होंने अपनी अपोस्टल पॉल से तुलना की जिनका उपवास किया गया और उनकी आलोचना की गई जब वो राजा अर्क्रिया से सामने अपना बचाव कर रहा था पर ये सभी उनकी दिव्यदर्शी से व्यक्ति को बर्बाद करता जोसेफ ने कहा उन्होंने दिव्यदर्शी देखी है वो जानता था कि उनके देखी है और स्वर्ग में सभी आश्चर्य नहीं है जानता था कि ईश्वर जानते थे और मैं इनकार नहीं कर सकता ना ही मैं इनकार करूंगा
I had seen a vision I knew it and I knew that God knew it and I could not deny it neither dared I That was
Joseph Smith की गवाही हमारी क्या हम कैसे जान सकते हैं कि गवाही दे जा सकते हैं जो उन्होंने कहा सच्चा है? कैसे कोई प्राप्त करता है कि हम गवाही कहते हैं? किसी प्रकार की ज्ञान प्राप्त करने से प्रथम खत्म है कि जाने की व्यक्ति इच्छा। अगला खत्म है आत्मिक ज्ञान की मामले में। जैसे हम आधुनिक ईश्वरी वचन में पढ़ते हैं, अगर तुम मांगोगे तुम्हें ईश्वरी वचन ज्ञान प्राप्त होगे कि तुम रेशाओं और चीजों को जान सको जो शांति लाती है, जो आनंद लाती है, जो आनंद जीवन लाती है। यहाँ वो जो यलमा ने लिखा जो उन्होंने किया था, देखो इन बातों को खुद जानो के लिए माने की दिनों तक उपास प्रार्थना की, और अब मैं जानता हूँ कि वो सब सत्य है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को मुझे प्राप्त किया है। जब हम इच्छा कर होते हैं, ढूंढते हैं, हमें याद रहना है चाहिए कि गवाही प्राप्त करने एक शान चीज नहीं है, पर एक प्रकार जिसमें हमें कुछ करने पड़ेगा। यदि कोई उसके इच्छा पर चलना है तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा ये परमेश्वर की है या मैं अपनी से कह रहा हूँ। गवाही प्राप्त करने के लिए और तरीके लगता है जब और ज्ञान प्राप्त करना है। गवाही देना द्वारा हम उसे प्राप्त या मजबूत करते हैं। किसी ने सुझाव दिया कि कुछ लोगों की गवाहियों आसानी से आती है जब वो खड़े होकर देते हैं, तुलने पर जब वो घुटने पर प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्तिगत गवाही हमारे विश्वास के लिए मूल्य है। जिस चीजों को हमने करना चाहिए ये गवाही को प्राप्त, मजबूत करने और सुरक्षित रखने के लिए, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। उस भूल में वादे के लिए योग्य बनने के लिए कि हमारे पास हमेशा उनका आत्मा रहे। निश्चित वो आत्मा हमारी गवाहियों का श्रुत है। जिनके पास पुनस्थापित सुमाचार का गवाही है, उसका यह भी कर्तव्य है कि वो बांधे। मोमन की पुस्तक सिखलाता है कि हमें हर समय और सभी चीजों में और सभी जगहों में ईश्वर की साक्षी के रूप में खड़े रहे। गवाही के तोहफे और देते हैं कि बीच में संबंध से सिखला धर्मशास्त्र और वादे की 46 भाग में है। बिना प्रकार के अंतिम तूफान का वर्णन करते हुए ईश्वरी वचन कहता है, कुछ को पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है कि ये जाने कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है और उसके दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। अनेक को दिया गया है कि उनके शब्दों के विश्वास करें कि उन्हें भी आनंद जीवन मिले अगर वो लगातार वफादार रहे। जिनके पास जाने के तोहफा आए, उनके पास सरपट कर्तव्य है गवाही देने का, ताकि जिनके पास तोहफा है उनके शब्दों में विश्वास करने की भी शायद आनंद जीवन मिल सके। हमारे लिए और भी अधिक जरूरत नहीं कि व्यक्तिक रूप और खुले अपने विश्वास को घोषित करने के लिए। There are many who are open to additional truths about God. इन सिद्धों ढूंढने वालों के लिए हम ईश्वर जो आनंद पिता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के दिव्य लक्षक और प्रस्थापना की विस्थापितता की पुष्टि करने की जरूरत है। हमें इन मौकों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने उद्धारकर्ता के प्रति अपने प्यार, उनके दिव्य लक्ष्य पर अपनी गवाही और उनकी सेवा करने की अपनी संपर्क। हमारे बच्चों को सुनना चाहिए जब हम भूड़े अपने गवाही देते हैं, अपने बच्चे को अपने बच्चे को प्रोत्साहित करने और वही परिभाषा देने की। यह भी पाठशाला कर्तव्य में जो ध्यान वो अन्य लोगों से पाते हैं उनके द्वारा मजबूत करें। हम उस समय में रह रहे हैं जब कुछ मोमन विश्वासियों को उन उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं और उनके कारण हमारी आलोचना करते हैं। जब हम उस तरह से अनुरोध विश्वास का सम्मान करते हैं, हमारे पास कर्तव्य है कि अपने धर्मशास्त्र और उनकी विश्वास करते हैं और उनका स्पष्ट करते हैं। हमें अपने विश्वासों के वर्णन करना चाहिए, न कि दूसरों को मौका दिया जाए अंतिम शब्द के लिए जो उचित रूप से पुस्तक है। इसके लिए गवाही जरूरी है, जिसके रूप से ये खुलेआम एक छोटी या बड़ी सभा की प्रत है। जब हम यह सच्चाई की गवाही देते हैं तो हम जानते हैं कि हमें वह वफादारी से कहना के चेतावनी का पालन करना चाहिए, धीरे और विनम्रता से। हमें धाप कठोर या दुबकियों नहीं चाहिए। जैसे पॉल ने सिखाया, हमें स्नेह से कहना चाहिए। कोई भी हमारी व्यक्तिगत गवाही से असम्मत हो सकता है। सम्मति में मैं कहता हूँ, सदस्य जिनके पास गवाही है और जो उपहार कार्य करते हैं अपने गिरजाघर नेताओं के निर्देश में, उन्हें कभी कभी आंधी आज्ञाकारिता को निष्पन्न। हमारे पास नेता है और निष्पन्न हमारे लिए संचालक है, पर जब हम सुसमाचार की सच्चाई जाने और सीखने का समझौता समय आता है, हमारे व्यक्तिगत गवाहियों पवित्र आत्मा की शक्तिशाली गवाही द्वारा हम प्रधिकृत के पास ईश्वर हमारी अनानंद पिता और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ सीधा संबंध होते हैं। यही हमारा अलौकिक समझ में असफल हो जाता है। यहाँ उन्हें उलझन में डेल देता है और एक साथ हो सकते हैं जो अपने नेताओं के मार्ग अपने और अपने लिए जानने के लिए फिर भी स्वतंत्र रहेंगे। शायद जो उलझन कुछ महसूस करते हैं, मैं व्यक्तिगत द्वारा समझाया जा सकता है कि ईश्वर की संबंध रखने के लिए यह तरीका जो धर्म सिद्धांत, धर्म विधियां और आदेश से संबंध रखता है, उसका प्रयोग हमारे पास व्यक्तिगत गवाही का भी तरीका है जो सीधे ईश्वर से संबंध रखता है। यह संबंध है उनके अस्तित्व, उनके साथ हमारा संबंध और उनके पुनस्थापित सुसमाचार की सच्चाई से। इस तरीके का परिणाम ज्ञान है। ये ढूंढ तरीका के दूसरे से सहायता करते, ज्ञान आग्रह और प्रोत्साहित करता है और आज्ञा ज्ञान तो बनाती है। हम सभी ज्ञान के प्रति आज्ञा है, चाहे विज्ञान या धर्म या वैज्ञानिक प्रयोग की परिणाम पता है कि विश्वास श्रुत से और परिणामों पर कार्य करता है। धर्म के मामले में विश्वास करने वाले की ज्ञान को आत्मिक है पर सिद्धांत के समान है। अंतिम दिन में संतों के मामला में जब पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं को पुनस्थापित सुसमाचार की सच्चाई और अनुराग करती है कि गवाही देता है, इन शिक्षाओं का पालन करने का चुनाव आंधी आखिरी करता नहीं है। हमारी सभी गवाहियों में हमारी घमंड और गर्व बचाई है। हमारी मोमन की पुस्तक की सिद्धांत को याद करना सच्चाई जो है लोगों के लिए था जिनके पास उस ईश्वर की थी हुई। जैकब ने कहा कि यह जिसने सारे परिणाम की रचना की है, बड़े में एल्मा ने चेतावनी दी है, तुम किसी भी दूसरे से अधिक मत समझो या किसी एक व्यक्ति को अपने आप को दूसरे से अधिक नहीं समझो। मैं अपने गवाही के साथ संबंध करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे पास स्वर्ग पिता है जिनके योजना हमें पृथ्वी पर लाती है। मैं जानता हूँ कि हमारे पास उद्धारकर्ता यीशु मसीह है
gives the assurance of immortality.
मैं जानता हूँ कि पिता और पुत्र जोसेफ स्मिथ के सामने उपस्थित हुए अंतिम दिनों में
restore the fullness of the gospel in these latter days.
और मैं जानता हूं कि आज हमारा प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉनसन द्वारा किया जा रहा है जिनके पास चाबियां हैं पुरोहित अधिकारियों को अधिकार देने का वो धर्मियों की प्रति करने जो आनंद जीवन की हमारी प्रति के लिए जरूरी है यीशु मसीह के नाम से आमीन
अब हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स जो बारह देवताओं का प्रसाद के हैं से प्रशांत से सुनेंगे उसके बाद एल्डर जेरल्ड एनलाइन जो सत्तर के हैं से सुनेंगे
I like you.
मेरे भाई और बहनों पिछले कुछ महीनों में मुझे एक विनम्र अनुभव हुआ जिसे मुझे मौका मिला जीवन के तोहफे पर आभार के साथ विचार करने का जब मैं अपने हाथ उठाया सोलम असेंबली में हम लोग वोट नहीं दिया और मैं हम अपने पर्सनल कवेनेंट
the laws, ordinances, commandments, and the prophet of God. I was so appreciative to participate with you and to be able to raise my right hand to the square.
इस अनुभव के समय मैंने लगातार ईश्वर हमारे अनंत स्वर्गीय पिता और उनके बाद पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु मसीह पर अपनी गवाही और कैसे मैंने उस गवाही को प्राप्त किया उन पर सोचा सोच विचार किया दुनिया भर के लोग प्रत्येक मजहब और विश्वास के जानने के लिए ढूंढते और संघर्ष करते हैं ईश्वर कौन है यीशु मसीह के साथ उनका संबंध क्या है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है मैं निश्चय ही जानता हूँ कि हमारे स्वर्ग के पिता और यीशु मसीह जीवित है प्रश्चित वास्तविक है ईश्वर जो पिता है और यीशु मसीह बिना अलग अमर प्राणी है वो हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वो हमारी शुद्ध हृदय प्रार्थनाओं के सुनते हैं और जवाब देते हैं उद्धारकर्ता ने अमेरिकन माधवीप के लोगों को गवाही दी मैं पिता के तायत को लेता हूँ और पिता मेरे तायत को और पवित्र आत्मा मेरे और पिता के तात्य को स्वीकार करते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे गवाही दी है कि ये चीजें सच हैं मैं अपनी युवावस्था में गवाही को प्राप्त करना शुरू किया जब मैंने तरह भविष्यवाणी घटनाओं पर सोच विचार किया जो जोसेफ स्मिथ द्वारा लिखे गए है यीशु मसीह के पुनस्थापित सुसमाचार के मूल विश्वासों का वर्णन करने के लिए इन घटनाओं में पहला था हम ईश्वर जो आनंद पिता है और उनके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं जोसेफ स्मिथ व्यक्तिगत अनुभव द्वारा परमेश्वर के तीन सदस्यों के स्वभाव को जानते थे जब वो 14 वर्षीय लड़का था वो जानना चाहता था कि उसके ईसाई गिरजाघरों में से किसका सदस्य बनना चाहिए धर्मशास्त्र में नए नियम के जेम्स की पुस्तक में उसने पढ़ा यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगो आज्ञाकारी वो प्रार्थना की लिए घुटनों पर हुए और उसे भेंट करने ईश्वर और जो पिता है और उनके पुत्र यीशु मसीह आए उसके नाम वर्णन के दो श्रेष्ठ व्यक्ति जिनके चमक और महिमा सभी वर्णों को नहीं मानता भगवान ने कहा ये मेरा परम प्रिय पुत्र है उन्हें सुनिए मेरे लड़कापन से जोसेफ स्मिथ का अनुभव मेरे लिए मार्गदर्शक रहा है और हम सभी के लिए हो सकता है जवान भविष्यवक्ता ने हमारे स्वर्ग के पिता और उनका पुत्र यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में सिखा, क्योंकि उसने धर्मशास्त्रों में अपने स्वर्ग के पिता की इच्छा जानने के लिए ढूंढा और फिर उसने वफादारी से पालन किया। उद्धारकर्ता द्वारा इस तरीके को तय किया गया और पूर्णता से उदाहरण दिया गया, जिस तरह से धर्मशास्त्र में हबिलचित है। जब मसीह 12 साल के था, उनकी माता मैरी और उनके संसारिक पिता जोसेफ ने उन्हें मंदिर में पाया। क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आशय है? पर यीशु जोसेफ के कार्य का बारे में नहीं कह रहा था, वो स्वर्ग के अपने वास्तविक और आनंद पिता के कार्य के बारे में कह रहा था। जिस तरीके से ईश्वर को पिता है ने अपने पुत्र को कुछ अवसरों में दिया, वो महत्वपूर्ण है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और फिर रूपांतरण पहाड़ पर बादल में से ये शब्द निकला कहता हुआ, ये मेरा चुना हुआ पुत्र है, इसके सुनो। जब यीशु अमेरिकन के महाद्वीप में उपस्थित हुए, उनका परिचय उसी प्रकार किया गया था, मेरे प्यारा प्रिय पुत्र को देखो जिसे मैं प्रसन्न हूँ और जिसके द्वारा मैं अपने नाम को याश्व किया है, तुम उसकी बातों को सुनो। और फिर लगभग 2 सर्विदाद वही शब्द जवान जोसेफ स्मिथ के कहा गया, ये मेरे परमप्रिय पुत्र है, उनके सुनिए। यह विशेष महत्व है कि जब भी स्वर्गीय पिता अपने पुत्र को परिचय हमेशा करना चाहते हैं, वो हमें सुनने का आदेश देता है। यीशु के शब्दों को सुने, ये यीशु कौन है? उन्होंने अपने पिता के साथ भाग लिया दुनिया की सृष्टि में और जिम्मेदार था अपने पिता के निर्देशन में। पवित्र पृथ्वी पर सभी चीजों के रचना करने के लिए और बिना संकय के मैंने दुनिया की रचना की, और मैंने उनकी रचना की अपने उद्देश्य के लिए, और पुत्र द्वारा मैंने उनकी रचना की जो मेरे इकलौते हैं। यीशु मसीह शारीरिक रूप में पिता के इकलौते पुत्र है, वो पिता और मेरे बीच के बिछुए है। वो ऐसे उद्धार करता है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। हम उनके पुत्र यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता के प्रार्थना करते हैं। यीशु जो पुत्र है वो अपने पिता नहीं है, पर वो अपने पिता की तरह है। वो भी शक्ति और अधिकार के महिमावित प्राणी है। ये मेरे लिए बहुत ज्ञान देने वाला और करुणिक विषय है जब विचार करता हूँ कि कैसे यीशु अपने पिता से बात करते हैं। अपनी महा निवेदन की प्रार्थना है जो धर्मशास्त्र में जॉन की पुस्तक में पाई जाती है, वहाँ सुस्पष्ट है कि यीशु आभारी है कि वो पुत्र है। उनके शब्दों को सुने जब वो अपने स्वर्ग के पिता को अपने संस्कृत लक्ष्य के गायकारी समझती थी। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उनको चेले पहुंचा दिया और विश्वास कर लिया। जैसे तू मुझे जगत में भेजा वैसे है ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। उद्धारकर्ता का प्रचार की है घटनों के समय चेले वास्तव में के एक हो गए थे, पर अपने शारीरिक रूपों से नहीं, वो उद्देश्य और स्नेह की एकता में एक हुए थे। वो भी बिना प्राणी है, पर वो उद्देश्य जो उनका प्यार हमारे लिए है और वो हमारे लिए कार्य करते हैं, उनमें वो एक है। उद्धारकर्ता लगातार प्रार्थना करते हैं, अब है पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जा जो जगत से सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझे से प्रेम रखा वैसा ही उसने प्रेम रखा, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझ से प्रेम रखा। और कैसे यीशु चाहते हैं कि हम पिता को जाने जैसे वो जानते हैं। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ने ही मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा। यीशु ने उनके लिए अपना मान प्यार दर्शय को उनके मार्ग अपनाने के लिए चुना, जब उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। मैं ये विधि नहीं करता हूँ कि उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि वो उन्हें उस दष्ट से बचा रखे। और फिर हमारे उद्धारकर्ता कोमलते से कहते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी मेरे साथ हो। प्रचित के त्याग की तैयारी में गेत्सेमने के बगीचे में यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की, तब जब उन्होंने अपने ऊपर सभी मानव के पापों, दुखों और कष्टों को लिया, उन घटनों में उनके अकेले उन्होंने ये फिर स्पष्ट किया कि वो अपने कार्य को नहीं कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, याद ही हो सके तो है कटोरा मुझ से टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हम सब के इस सबसे निर्णायक समय में वो खुद से बात नहीं कर रहा था या अपनी शक्ति पर निर्भर था, वो अपने पिता सर्व शक्तिमान ईश्वर को पुकार रहा था कि उनकी पुष्टि करने और उन्हें उनकी पिता की इच्छा की पूर्ति करने के मौका दे, और उनके पिता एक फरिश्ता भेजा। दुनिया की सृष्टि से पहले से लेकर क्रूस के अंतिम समय में उद्धारकर्ता अपने पिता का कार्य कर रहे थे। उन्होंने उस कार्य को समाप्त किया जो उन्हें करने के लिए भेजा गया था, इसलिए हम ये ना सोचे कि कैसे वो बात कर रहे थे। जब क्रूस पर था, उन्होंने कहा पूरा हुआ, और बड़े शब्द से पुकार कर रहा कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दी। हम जानते हैं कि वो अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे थे। मैं गवाही देता हूँ कि उद्धारकर्ता जीवित है, वो पिता के सिर्फ इकलौते हैं, और वो फिर आएंगे। वो यीशु मसीह है, इस्राएल के पवित्र है, वो जो दया, कृपा और सच्चाई से पूर्ण है, वो जग के पापों को लेने आएगा। हाँ, वो जब वो सब लोग उसे नाम करके पक्का विश्वास रखते हैं, उन सब के पापों को वो लेगा। वो ईश्वर के वास्तविक पुत्र है जो तीसरे दिन मौत से जी उठे हैं, जिन्होंने पूर्ण जीवन की वास्तविकता है लाए। मैं ये भी गवाह देता हूँ कि ईश्वर हमारे आनंद पिता जीवित है, और हम प्रत्येक से प्यार करते हैं क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। इतना महान उनका प्यार है कि उन्होंने अपने लौटे बेटा भेजा है। प्रभु यीशु मसीह एक के देवदूत के रूप में मैं उस सच्चाई पर गवाही देता हूँ जो धर्म शास्त्र में है, जो मुझे प्रकट किया गया है, वो तुम्हारी आज्ञा करता और इच्छाओं के अनुसार तुम्हें प्रकट किया जाए। उद्धारकर्ता ने अपने मरणशील जीवन के प्रचार के समय सिखलाया इस महान सच्चाई जो को हम सभी पर लागू है। तुम जो कुछ मेरे नाम पर पिता से पाने के विश्वास कर मांगोगे, और अगर तुम्हारे मांग उचित रही, तब सुनो, वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि मैं जानता हूँ जिस चीज़ें को मैंने कहा, और वो सच है कि तुम वही निश्चयात्मकता को ढूंढो। मेरी प्रार्थना है that you may seek for that same surety in your heart
in your prayers is my prayer.
Yesu Mesih ke naam se. Amen.
Today I should like to speak on the importance of opening our hearts to the Holy Spirit. After baptism, we are confirmed and given the Holy Ghost.
This is the supernal gift. Warns, enlightens, and inspires us.
Nephi put it very simply. If you will enter in by the way, receive the Holy Ghost, it will show unto you all things you need to help
of the Holy Spirit to make our way quickly. जैसे पॉल ने बताया इस संकटपूर्ण वक्त से सुरक्षित गुजरना है पवित्र आत्मा आत्मा होने के कारण हमारे दिल में बस सकता है और हमारे दिल से संपर्क कर सकता है आत्मा की आवाज धीमी और स्थिर होती है स्थिर कैसे और धीमी कैसे क्योंकि वो हमारे कान की जगह मन और दिल से बात करती है प्रेसिडेंट बॉयड के पैकर ने कहा है पवित्र आत्मा जब बोलती है हम सुनने की जगह महसूस करते हैं हम दिल में महसूस करते हैं धर्मग्रंथों में संदेशताओं ने सिखाया कि व्यक्तिगत प्रेरणा दिल से जुड़ी है देखो मामन ने सिखाया दीनता और दिल के नम्रता की वजह से पवित्र आत्मा आती है आत्मा ने कहा जो दिल को कठोर बनाएगा उसे वाणी का कम भाग मिलेगा जो दिल को कठोर नहीं बनाएगा उसे ज्यादा भाग मिलेगा हिलमन ने सिखाया उनके दिल भर गए आनंद और संतोष से दिल भगवान को समर्पण करने से सामिस ने लिखा प्रभु टूटे दिल के करीब रहता है क्या हम सब आत्मा से मिलन नहीं चाहते कि प्रभु हमारे पास आए हमारे जीवन में आनंद आए अगर ऐसा है हमें सोचकर अपने दिल की स्थिति की जांच करनी चाहिए दिल कोमल स्थान है कई प्रभावों से उसे असर पड़ता है दोनों अच्छा और बुरा उसे दूसरों से सगमा पड़ सकता है पाप से कठोर हो सकता है प्रेम से विनम्र होता है बचपन से हम दिल को सुरक्षित रखते हैं उस पे पहरा लगाते हैं ताकि कोई बगैर मंजूरी के अंदर ना आए कुछ दिल होते हैं घर के चावल और लगे बाड़े की तरह जिनके फाटक पर स्वागत लिखा होता है कुछ होते हैं पाप और दर्द से कठोर जिनके बाड़े ऊंचे हैं जिन पर तार लगी है जिनके दरवाजे पर ताला लगा है और फाटक पर प्रवेश मना है लिखा हुआ है अब हम सोचें उस दिल के दरवाजे के बारे में जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है निफा ने पढ़ाया जब कोई पवित्र आत्मा की शक्ति से बोलता है पवित्र आत्मा की शक्ति उसे मानव दिल तक पहुँचाती है डेविड ए बिडनार ने समझाया आत्मा की शक्ति संदेश को दिल तक पहुँचाती है दिल के अंदर नहीं संदेश दिल के अंदर तब पहुंचेगा जब पाने वाला उसे अंदर आने देगा सिर्फ दिल तक क्यों व्यक्तिगत चुनाव स्वर्गीय पिता को पवित्र है वो मानव दिल पर जबरदस्ती नहीं करेगा मानव जबरदस्ती करेगा लेकिन भगवान नहीं भगवान हमें अपने दिल का रक्षक बनने देता है हमें अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा के लिए खोलना पड़ेगा वो जबरदस्ती नहीं करेंगे तो हम दिल को कैसे खोलें मसीहा ने पढ़ाया, पहाड़ के दिए हुए प्रवचन में कहा, धन्य है साफ दिल वाले, उन्हें भगवान दर्शन होंगे। जो साफ है वो मैला नहीं। साफ दिल होना ये भगवान से प्रेरणा मिलने के लिए जरूरी है। हम में से किसी का भी दिल निर्दोष नहीं है, लेकिन जब लगन लगा के हम अपवित्रता हटाएंगे, पवित्रता पवित्र आत्मा के लिए स्थान बनाएंगे। संदेष्टा जोकब ने ये वचन दिया है, तुम साफ दिल वालों सर ऊपर करो और भगवान के प्यार का भोज लगाओ। लिबर्टी जेल में संदेष्टा जोसेफ को प्रेरणा मिली कुछ दिलों के बारे में। देखो, कईयों को बुलाया है लेकिन कम लोगों को चुना है। कुछ को क्यों नहीं चुना? क्योंकि उनके दिल दुनिया की चीजों में व्यस्त हैं, उनका सम्मान पाने के लिए। दुनिया के में कई लोग समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। बुक ऑफ मॉर्मन में समृद्धि ने कई बार लोगों को भगवान से अलग किया। मॉर्मन ने चेतावनी दी, हम देखेंगे उसी वक्त जब वो लोगों को समृद्धि दिलाएंगे, उनकी खेती बाड़ी में वृद्धि देंगे, लोग दिल कठोर करके उनके प्रभु भगवान को भूल जाएंगे। प्रभु ने दुनिया की चीजों में लगाने के तीन परिणाम बताए हैं। पहले, हम पश्चाताप करने के बजाय पाप छुपाते हैं। फिर भगवान की बातें पाने की जगह घमंड और खोखले इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। अंत में दूसरों पर दुराचारी प्रभुत्व जताते हैं। घमंड ये दुनिया की चीजों पर दिल लगाने का नतीजा है। घमंड दिल को कठोर बनाता है, फिर प्रेरणा नहीं मिलती। उदाहरण, प्रभु ने कहा, मैं अपने सेवक सिडनी विग्डन से निराश हूँ, उसने अपने दिल को उच्च बनाया, सलाह नहीं मानी। इसकी तुलना तुम इस वचन से करो, विनम्र रहो, फिर प्रभु आपके हाथ पकड़ के आपको प्रार्थना का जवाब देगा। लिबर्टी जेल में संदेष्टा जोसेफ को मौतिक दिल की स्थिति प्रभु ने बताई। उसने स्वर्ग पीछे हट जाता है, प्रभु की आत्मा दुखी होती है, पता चलने के पहले वो अकेला रह जाता है। भाइयों और बहनों, इस संकटपूर्ण वक्त में आत्मा दुखी करके हम अकेले नहीं रह सकते। फिर मैं कहता हूँ, अपने दिल की परिस्थिति से धार्मिक प्रेरणा पर असर पड़ता है। हमें हर दिन प्रभु की प्रेरणा के लिए दिल खुला रखना चाहिए। हम दिल के रक्षक होने के नाते ये चुन सकते हैं। हम चुनते हैं कि हम किसे अंदर आने देंगे और किसे बाहर छोड़ेंगे। उनके दो वादों से मैं भाषण समाप्त करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बद्धों, अपने दिल को प्यार से भरने की स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो, ताकि हम उनकी तरह साफ हो सकें। और देवदूत पॉल की ये घोषणा, मैं मसीह द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, वो शक्ति देता है। हमें मसीह से शक्ति और प्यार भरा दिल मिले, यही मेरी प्रार्थना है। ईसा मसीह के नाम से आमेन।
गायक मंडली और धर्म सभा, आप गाएगी रिडीमर ऑफ इज़राइल, एल्डर कार्लोस एच अमेडो और विलियम आर वॉकर, जो 70 के हैं, फिर हमें संबोधित करेंगे। उसके पश्चात आएंगे रिचर्ड जी स्कॉट, जो 12 देवदूतों का प्रसाद के हैं।
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
वो सब जो मसीह ने हमारे मुक्ति के लिए किया है अनोखा है. उसने अपना मुक्ति के कार्य लगभग 3 साल से प्रचार करिए और अंदर समाप्त किया. आज मैं 3 लक्ष्य पर जोर देता हूँ उद्धारकर्ता के जीवन का इस धरती पर, उनकी प्रश्चित का बलिदान. पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य था कि उसने किया उसके पिता से मिला एक महान और अंतिम बलिदान पूरे मानव जाति के लिए. स्वर्ग के पिता के इकलौते बेटे शारीरिक रूप से उसे पिता का सारे दिव्य समक्ति पाई और अपने सांसारिक माता मेरी से वंशाल. सिर्फ उसका बलिदान हमें हमारे मरणशील और घिरी हुई स्थिति से उठा सकता है. वो इस दुनिया में आया खास लक्ष्य की आया अपने जीवन देना, क्योंकि वो एक ही जो हमें आनंद जीवन दे सकता है. कोई और मरणशील जीव सृष्टि के जीवन से पहले वर्तमान या भविष्य में हमारे पापों के प्रायश्चित को झेलने के लिए ना जाए और ना जाएगा. वह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है. वो लौटे पूरे शक्ति और महिमा के साथ हमारे समक्ष राज्य और शासन करने के लिए. हमारा दूसरा रहना द्वारा लक्ष्य है हमारे वो सिद्धांत सिखलाना जो उसने अपने पिता से सीखा, जिसमें है उधार के आनंद होने के धर्मविधि और वादे. उसका सिद्धांत है प्यार, माफी और दयालु का या मार्ग है शांति या एकता, मनुष्य एक साथ जीने और लौटकर परमेश्वर के साथ जीने का. उसका तीसरा लक्ष्य था दूसरे के सेवा द्वारा राज्य बनाना. ये एक अलग तरह से नृत्य था. सेवा उनके चेलों की एक चमकता है, एक दिव्य क्षमता. तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। ये मैं नहीं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धो तो तुम भी दूसरे के पांव धो चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। राज्य के समाचार को प्रचार करने और सभी प्रकार की भ्रमण से चंगाई देने के लिए वो इस दुनिया में थे। जब हमने बपतिस्मा ली, हमने उसकी सिद्धांत सिखलाया और अपनी भूलों और सेवा करने की जिम्मेदारी। एक मौके पर अपना सिद्धांत सिखलाने के बाद उन लोगों पर दया आई और चमत्कार किया, थोड़ी सी रोटी और मछली से भीड़ को खिलाया, अपने दयालुत्व और सेवा की चित्रों की दिया। दूसरे दिन भीड़ और बढ़ गई थी क्योंकि उनके भोजन मिला था। उसने उन्हें दृष्ट इरादा और आनंद दृष्टि से सिखलाया, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढो तो कि तुम्हें आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए तुम रोटियों खाकर भर गए। निश्चय भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए अनंत जीवन तक रहते जिसे मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा। एक गिरजा के रूप में हमें भूखों को खिलाना, बीमार तक सहायता पहुंचाना, नंगे को कपड़ा देना और बेकार को चाहत देना है। उपहास बैंड हमें सदस्य के मूल और तत्काल जरूरतों को हल्का करते हैं। जब प्रकृति आनंद होती है हम सेवा प्रदान करते हैं ह्यूमैनिटेरियन सेवस द्वारा उन भाइयों और बहनों के लिए जो हमारे विश्वास के नहीं है। संसारिक जरूरतों के अपेक्षा करे बिना यीशु मसीह का गिरजा अंतिम दिनों के संतों का प्रभु की आदेश द्वारा सभी ऊंचे और महान सेवा के कार्य है जो सभी मनुष्य की मसीहा के सिद्धांत सिखलाना और उन्हें समृद्ध करना, उद्धार की धर्म विधि को अपनाना ताकि उन्हें अमरशाली और आनंद जीवन प्राप्त हो। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमेशा प्यार करता है। वह हमें मौका देता है हमारे नए चुनने क्षमता और हमें उस दुरुपयोग करते हुए वो अनुमति देता है। जब हम ऊपर भरोसा करते हैं मसीह हमारी सहायता करता है। वह हमें सिखला नहीं सकता, वह हमें सही करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, परंतु मार्ग दिखला सकता है। वास्तव में हमारे उसे राज्य में सेवा करने के लिए मसीह चाहता है कि क्योंकि एक आदमी अपने स्वामी को कैसे जानेगा जैसे सेवा अपने पहले ना ही हो, जो उसके लिए आज्ञात है उसकी समझ और हृदय से सर्वदा पारे हो। मैं गवाही देता हूँ कि अपने साथियों की सेवा करेंगे द्वारा हम प्रभु को जानते हैं। सेवा हमें विश्वास में मजबूत और उसके राज्य में लंबादायक बनाता है। सेवा हमें लक्ष्य और बाल देता है, हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमारे दिव्य स्वभाव को शुद्ध करता है। हमें अपने साथियों के प्यार करने और समझा सिखलाता है और अपने व्यक्तिकित को भुलाने में सहायता करता है। स्वतंत्रता अभिमान और देता है, हमें दूसरे की जरूरतों के बारे में सोचने की सिखलाता है, जो हमें मौका देता है उधार घरता जैसे का विश्वास करने का। दया, प्यार, धीरे समझ और एकता बढ़ेगा जैसे हम सेवा प्रदान करेंगे, जबकि अनुराधा इराया लोभ और स्वार्थ दूर हो जाएगा। हम जितनी ज्यादा खुद का योगदान देंगे उतनी हमारी सेवा करने का चमकता चमता समझ और प्यार बढ़ेगा। जो सेवा करेंगे वो समय परमेश्वर को प्रशंसा करने का प्रयास करेंगे और उसके साथ एकता से रहेंगे। वो शांति का भूरे भर होगा, उनका स्वभाव खुशहाल रहेगा और दया की आत्मा होगा। जो सेवा करेंगे वो खुशी करेंगे, आनंद करेंगे, बांधेंगे और अपने साथियों को ऊपर उठेंगे।
and they will not find reason or have time to become offended. They develop
वो मसीह का प्यार पड़े पाएंगे, वो पहचान या पुरस्कार की अपेक्षा रहेंगे. जो सेवा करते हैं वो तैयार रहते हैं सदैव सभी जगह और सभी लोगों से अपनी संपत्ति और ज्ञान बढ़ाते के लिए. जो विपत्ति में सेवा प्रदान करते हैं वो अच्छे भविष्य की जीवित आशा को बरकरार रखेंगे. मसीह में उनकी आशा के कारण वे पूरी वक्त में स्थित रहेंगे. जो सेवा प्रदान करेंगे अपने नियुक्तों को विनम्रता से अपने आएंगे, वो रुकावटों को ध्यान में रखते हुए रहेंगे और वो सभी को शक्ति जो चाहते हैं जब तक वो दोनों में से एक परमेश्वर है. किंग बेंजामिन ने दिव्य प्रेरणा के साथ घोषणा किया, जब तुम अपने साथी के करते हो तब तुम परमेश्वर की सेवा करते हो. जो सेवा प्रदान करते हैं उनके परमेश्वर की व्यक्ति और व्यस्तता की ज्यादा समझ होगा. जो श्रद्धा से सेवा प्रदान करते हैं चाहे सब कार्य उनकी मर्जी से खिलाफ हो, वो आसानी से निश्चय थकान या प्रचित नहीं होते, क्योंकि मन से शांति आत्मा के साथ का वादा उन्हें कभी नहीं होगा छोड़ा. गिरजा में कई हजार सदस्य हैं जो सेवा कर रहे हैं. 170 से ज्यादा देशों में सेवा करते हैं. वो नृत्य शिक्षा और दूसरों के देख रेख द्वारा सेवा प्रदान करते हैं. ठंगे या संसारिक पुरस्कार या से रहित, दुनिया के प्रशंसा या मनसात से रहित, वो अपने समय अपनी कुशलता और अपने सदान देते हैं. वो अपने सब कुछ दांव पे लगाते हैं और बहुत अच्छी और बढ़िया सेवा करते हैं. कुछ समय बाद वे सेवा से मुक्त जाते हैं और लोगों से सेवा के मौका देने के लिए. ऐसी सेवा के कारण गिरजा वो आज जो वो है. यीशु मसीह का गिरजा अंतिम दिनों में है. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अभी निष्ठावन संतों के इस जिनों सेवा. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर सदा तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद दे. यीशु मसीह के नाम से आमीन.
What a blessing and privilege it is for us.
यह हमारा अनमोल अवसर है कि प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन, प्रेसिडेंट हेनरी बी आयरिंग और प्रेसिडेंट डीटर एफ हुडॉर्फ को नए प्रेसिडेंसी के रूप में अपना रहे हैं. मैं वेस्टर्न कैनेडा में एक छोटा लड़का था. मेरे दादाजी और दादी जी के घर में फर्स्ट प्रेसिडेंसी का चित्र था. ऐसा लगता था कि घर में आने वाले हर व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हो. इस फोटो में जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ अपने काउंसलर्स जेरुबन क्लार्क जूनियर और डेविड ओ मैके के साथ थे. मुझे पता था कि ये ईश्वर के प्रॉफिट हैं. इस फोटो का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. मेरे दादाजी और दादी जी के घर थोड़ी ही दूर था, इसलिए मैं उनके यहाँ काफी बार जाता था. मुझे याद है जब मैं उस फोटो को देखता था. मैं सोचता था कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी की फोटो को घर में लगाने का क्या महत्व है. ये उनके बच्चों और नाते पोतियों के लिए रहा होगा कि वे फर्स्ट प्रेसिडेंसी के महत्व को समझ सकें. सालों बाद मैं समझा कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी की फोटो दिखाना जोशुआ के सुंदर विचार की तरह था. निश्चय करो कि तुम किसके आदेशों का पालन करोगे. मैं और मेरे परिवार प्रभु का पालन करेंगे. जेम्स और फैन वॉकर के घर आने वाले लोग जानते थे कि वह प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं. उनका पोता होने के कारण मुझे यह पता था. जब मैं छोटा लड़का था मैं नहीं जानता था कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी में तीन लोग का होना जरूरी क्यों है। मैं जानता था कि मेरे पिता बिशप रिक के तीन लोगों में से एक थे। मैं जानता था कि मेरे दादाजी एक स्टेक प्रेसिडेंट थे और उनके साथ दो काउंसलर्स थे। हर प्रेसिडेंसी में एक नहीं बल्कि तीन लोग होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। प्राइमरी में मैंने सीखा था कि वे ईश्वर द्वारा बुलाए गए होते हैं, जिनके पास सही शक्ति होती है और ये उनके सिर पर हाथ रखकर किया जाता है।
I then knew that a man must be called of God by prophecy and by the laying on of hands by
those सर पर हाथ रखकर किया जाता है उन लोगों द्वारा जिनके पास सही शक्ति होती है। 1835 में प्रभु ने जोसेफ स्मिथ को चर्च की प्रेसिडेंसी का सही तरीका बताया था। जरूरत के अनुसार प्रेसिडेंट्स और ऑफिसर्स होते हैं। मेलकिसेदेक प्रीस्टहुड के तीन हाई प्रीस्ट्स उस ऑफिस में बुलाए जाते हैं। इन तीनों को चर्च के लोग अपने विश्वास और प्रार्थना द्वारा सहायता करते हैं। तीन नेताओं का एक समूह, ना कि एक प्रमुख नेता और दो अन्य नेता। ये है प्रभु के चर्च का फर्स्ट प्रेसिडेंसी। प्रभु ने अपने चर्च को इस तरह बनाया है, लेकिन बाकी की दुनिया इस तरह काम नहीं करती। मुझे एक स्क्रिप्चर ध्यान आता है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल से अलग हैं और मेरे काम करने का तरीका भी, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है इसलिए मेरे तरीके और ख्याल भी तुम्हारे से ऊंचे हैं। मेरे सातवें जन्मदिन के पास मैंने फर्स्ट प्रेसिडेंसी के बारे में सीखा जब प्रेसिडेंट जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ चल बसे थे। मैं फर्स्ट प्रेसिडेंसी के क्रिया को नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था कि प्रॉफेट चल बसे थे और उन और नए प्रॉफेट आए थे। मैं जानता था कि प्रॉफेट चल बसे थे और हमारे एक नए प्रॉफेट आए थे। 13 साल की उम्र में मेरे बिशप ने मुझे बुलाकर डीकन कोरम्स का प्रधान बनाना चाहा और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि कौन से काउंसलर्स होने चाहिए। प्रभु ने मुझे काउंसलर चुनने में मदद की और मैंने जाना कि काउंसलर जरूरी क्यों होते हैं। मैंने अपने काउंसलर्स के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। बिशप ने मुझे सिखाया कि प्रेसिडेंसी किस तरह काम करना चाहिए। दूसरे कोरम्स में काम करते हुए मुझे पता चला कि काउंसलर्स क्यों जरूरी होते हैं। कई प्रेसिडेंसीज में काम करने के बाद मैंने जाना कि काउंसलर्स केवल एक प्रेसिडेंट के बदले कितने फायदेमंद होते हैं कोई भी निर्णय बनाने में। मैं समझता था कि प्रभु तीन हाई प्रीस्ट क्यों चाहते हैं अपने चर्च को चलाने के लिए। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सभी चीजों में नमूना दिया है ताकि तुम्हें धोखा नहीं हो। प्रभु ने हमें नमूना नेताओं का नमूना दिया है। कोरम ऑफ द 12 और 70 को छोड़कर बाकी सब में एक प्रेसिडेंट और दो काउंसलर्स होते हैं। हमें हम सभी को जो प्रेसिडेंसीज में हैं उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस तरह वे साथ में मिलकर काम करते हैं हमें उनकी तरह बनना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। प्रेसिडेंट गॉर्डन पी हिंगली ने कहा, प्रभु ने काउंसलर्स को विशेष कारण से चुना है। उन्होंने आगे कहा, सोमवार के बजाय हर सुबह फर्स्ट प्रेसिडेंसी साथ में मिलती है। मैं प्रेसिडेंट फाउस्ट और प्रेसिडेंट माउंसन के साथ बात करके निर्णय करता हूँ। उसके बाद मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ और उसके बाद निर्णय लेते हैं। हम साथ में मिलकर काम करते हैं। काउंसलर्स हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और मदद करते हैं ताकि हम गलत निर्णय न लें। प्रेसिडेंट जोसेफ स्मिथ के काउंसलर बताते हैं, किसी भी परिस्थिति में सभी तीन साथ मिलकर बात करते हैं और फिर निश्चय लेते हैं। जब वो इस साथ में एक निश्चय पर आते हैं, रेवलेशन हमें सिखाता है कि कोरम्स में हमारे निर्णय सच्चे दिल, विनम्रता, विश्वास, ज्ञान के साथ लेना चाहिए। प्रभु बताते हैं, आज हमें अपने नए फर्स्ट प्रेसिडेंसी को स्वीकार किया है। उनके ज्ञान और शक्ति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा यदि जैसे जैसे वे अपने चर्च के नेताओं को स्वीकारेंगे और उनके आदेशों का पालन करेंगे। और मैं अभी जानता हूँ कि ऐसा है और गवाही देता हूँ कि प्रेसिडेंट थॉमस एन स्वानसन ईश्वर के प्रॉफिट हैं और वो आज पृथ्वी पे प्रॉफिट हैं और उनके काउंसलर्स उन्हें मदद करेंगे। ईसा मसीह के नाम में आमीन।
I bear solemn witness of how deeply I love
कुछ विषय इतने भावुक और व्यक्तिगत होते हैं और बड़ा डालने वाला एहसास जगा सकते हैं कि उनका जिक्र कभी कभार खोल आम किया जाता है। फिर भी अगर कोमलता और सम्भूति से इसकी चर्चा सच्चाई की रोशनी में हो, इस विषयों पर चर्चा करने से हमें और ज्यादा ज्ञान मिलता है। जैसे जैसे दर्द कम होता है, स्वस्थ रह करने के आशीर्वाद और वास्तव में इसे आगे की विपत्ति से बचाओ। बड़ी गहरी इच्छा है सहायता के मार्ग साफ दिखलाने के का कि मैं तुमसे बात करता हूँ जो मानसिक, जबानी, शारीरिक और खासकर युवा दुरुपयोग संबंधित विनाशक परिणाम सहते हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ जो जिसका कारण बनते हैं। मैं उन दुरुपयोग पर ध्यान दूंगा, हालांकि जो उपदेश दिया जाएगा और अन्य दुरुपयोग के लोगों को सहायता दे सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मुझे सहायता मिली सहानुभूति से बतलाने के लिए, सहायता देने के लिए और ना कि क्षतिग्रस्त जीवन को और कठिन बना दूं। यह भी संभव है इस निर्दयक घृणित पाप की बढ़ती आकृति शायद तुम्हारे जीवन पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव न डाल सकती है, फिर भी वो इस दुनिया में इतना व्यापक है कि उसने तुम्हारा प्यार करने वाला पर प्रभाव डाला होगा। मेरा इस विषय पर चर्चा शुद्धता पूर्वक होगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है चंगा करने और ना कि बिगाड़ने का। वो समझते थे कि उनके कुछ आत्मिक बच्चे इस चुनने के क्षमता का दुरुपयोग करके दुश्मन को भारी मुसीबत में डालेंगे। कुछ तो पवित्र पुरुषों को भी जटिलता देंगे, जैसे कि पिता या परिवार सदस्य को मासूम बच्चे का दुरुपयोग करता है, क्योंकि हमारे स्वर्ग के पिता पूर्ण रूप से न्याय करते हैं। ओ चंगाई जो शांति का एहसास दे उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के प्रश्चित के शक्ति द्वारा आती है, वो सुधारने के लिए जो आने है, जब पूर्ण पश्चाताप से जोड़ दिए जाता है, प्रश्चित कर्ता को भी तरीका देता है घोर सजा से बचने को। मैं गवाही देता हूँ कि मैं जानता हूँ इसे घोर दुरुपयोग के शिकार लोगों के जो सफलतापूर्वक कठिनाई से ही प्रश्चित की शक्ति द्वारा पूर्ण चंगाई प्राप्त कर चुके हैं, जब उसकी अपनी चेतनाएं और दूर होगी, वो लौटी एक अनुभवी दंपति के साथ। मुझे ऐसा लगा कि वो उन दोनों से बहुत प्रेम करती है। उसके चेहरे पर चमक थी। उनसे शुरुआत की, एल्डर स्कॉट ये मेरे पिता है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो चिंतित है कुछ विषयों पर जो मेरे बाल अवस्था में हुई। वो अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है कि आप इनकी मदद करें। कितना महान पुष्टिकरण है उद्धारकर्ता के स्वास्थ्य करने की क्षमता का। वो अब दुरुपयोग के परिणाम से पीड़ित नहीं थी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समझ थी उनके प्रश्चित के बारे में, पर्याप्त विश्वास और उनके कानून का पालन करती। जैसे आप पूरे नाम से प्रश्चित पर अध्ययन और अपने विश्वास पर अभ्यास करें कि यीशु मसीह के पास वो समर्थ करने की शक्ति है। शैतान रचनाकार है दुरुपयोग के सारे विनाशक परिणामों का। उसके पास आधुनिक क्षमता है एक व्यक्ति को व्यर्थ परिस्थितियों में पहुंचाने की। उसकी योजना है पीड़ित आत्मा को दयालु स्वर्ग पिता और प्यारे मुक्तदाता की चंगाई से दूर करना। अगर तुम्हारा दुरुपयोग हुआ है, शैतान तुम्हें बतलाने की कोशिश करेगा कि वो कोई समाधान नहीं है, जबकि वो निश्चितता से जानता है कि वहाँ है। शैतान यह जानता है कि चंगाई आती है हमारे स्वर्ग के पिता की उनके बच्चों के लिए अतल प्रेम के द्वारा। वो ये भी समझता है कि चंगाई की शक्ति यीशु मसीह के प्रश्चित से जुड़ी है। इसलिए उसकी योजना है कि तुम्हें तुम्हारा पिता और उसके पुत्र से जुदा करने का हर प्रयास करें। शैतान को तुम्हें यह स्वीकार करना है देखी तुम्हें सहायता के कबील नहीं हो। शैतान तुम्हारे दुरुपयोग का इस्तेमाल करता है तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने, अधिकार में तुम्हारे भरोसा के नष्ट करने, डर उत्पन्न करने और निराशा के एहसास लाने में। दुरुपयोग तुम्हारे अच्छे मानव संबंध बनने की चमत्कार को नष्ट कर सकता है। तुम्हारे पास विश्वास होना चाहिए कि ये सब बुरे परिणाम सुधार सकते हैं, नहीं तो तुम पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकोगे। शैतान कोशिश करेंगे तुम्हें स्वर्ग के पिता से अलग करने के लिए इस विचार के साथ कि अगर वो प्रेम करता है, वो इस विपत्ति को खत्म कर देता है। पहचानिए कि अगर तुम महसूस करो कि तुम स्वर्ग के पिता का प्रेम नहीं हासिल करते हो, तुम शैतान के वश में हो। चाहे प्रार्थना करना कितना कठिन ही ना हो, घुटनों पर होकर स्वर्ग के पिता से मांग कीजिए कि तुम्हें उन पर भरोसा करने की क्षमता दे और तुम्हारे लिए उनके प्रेम को महसूस करे। मांग कीजिए कि तुम जान सको कि उसका पुत्र तुम्हें चंगा कर सकता है अपने दयालु प्रस्तुत द्वारा। नैतिक चुनने की क्षमता को बचाने के लिए प्रभु लोगों को इस क्षमता के दुरुपयोग से नहीं रोकता, हालांकि वो उन्हें ऐसे कर्म के लिए दंड देगा अगर पूर्ण रूप से पश्चाताप नहीं हुआ है। हमारे पिता ने एक रास्ता दिया है कि कर्मों के परिणाम से स्वस्थ होने के लिए बल द्वारा, अधिकार का दुरुपयोग द्वारा या किसी के भाई से जो अस्थिर रूप से दुर्व्यवहार होने वाला के चुनने की क्षमता को छीन लेता है। स्वस्थ करने से पहले जरूरी है बच्चाओं जैसे विश्वास करना कि स्वर्ग के पिता तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हें मार्ग दिया है चंगाई प्राप्त करने के लिए। उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने अपना जीवन दाव पर लगाया उसे चंगाई को दिलाने के लिए, पर कोई चमत्कार संबाधन नहीं है, ना कोई सरल दया जो चंगाई दिल सकता है। चंगाई के लिए जरूरी है यीशु मसीह में आसान यीशु मसीह में गहरा विश्वास और उनकी ना खत्म होने वाली चंगाई की क्षमता। स्वस्थ करने की समझदार बिशप ये स्थायी अध्यक्ष से शुरू हो सकता है। गंभीर दुरुपयोग भी पेशवर सहायता से लाभ उठा सकता है। कई तरीके हैं चंगाई पाना आराम करने के, पर याद रखें कि पूर्ण चंगाई उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु और मुक्तदाता द्वारा प्राप्त होता है। विश्वास रखिए कि कोशिश द्वारा उसके संपूर्ण निरंतर आनंद प्रश्चित तुम्हारे पीड़ा को स्वस्थ कर सकता है। अभी जितना असंभव लगता होगा, वक्त के साथ जो चंगाई तुम उद्धारकर्ता से हासिल करोगे तुम्हें मौका देगा सच्चे मन से दुर्व्यवहार करने वाले को माफ करने में और उसके प्रति दुख की भावना भी हो जाए। जब तुम दुर्व्यवहार को माफ करोगे तुम दुख और दिल की पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। अगर वर्तमान में तुम्हारे साथ दुरुपयोग या पहले कभी हुआ है, साहस हासिल करके मदद ढूंढिए। तुम्हें कठोरता से धमकाया होगा या डराया गया होगा ताकि तुम दुरुपयोग के बारे में ना बतलाओ। हिम्मत रखिए अभी करने की। जिस पर तुम्हें भरोसा कर सको उसके सहारा लीजिए। तुम्हारे बिशप या स्टेक प्रेसिडेंट तुम्हें उपयोग सलाह से सिखाएंगे और तुम्हें नागरिक अधिकारियों के साथ मदद करेंगे। स्पष्ट करें कैसे तुम्हारे साथ दुरुपयोग हुआ और पहचाने किसने किया है। तुम्हारे कार्रवाई से किसी निर्दोष को ऐसे ही परिणाम से बचाया जा सकता है। प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा, पर तुम्हें खुद सहायता के लिए आगे बढ़ना होगा। याद रखिए कि शिकारी बड़े अनुभवी होते हैं। खुले आम अपने शुद्धता का आरंभ और बचाव करने में ताकि वो अपने बुरे कर्मों का छिपा सके। प्रार्थना करें कि सहायता की कोशिश में निर्देशन प्राप्त हो और सहायता मिलेगी। वक्त आने पर वो नहीं कि पूर्ति करेंगे अगर पूर्ति तरह से पश्चाताप ना हुआ। अब उस शिकारी के लिए जिसने किसी के जीवन को नाश कर दिया दुरुपयोग के द्वारा, पहचानिए कि तुम्हें तुम्हारी लत के लिए सहायता चाहिए या तुम्हें नष्ट करेगा। तुम खुद से छुटकारा नहीं पा सकोगे। तुम्हें किसी पेशवर की खास सहायता की आवश्यकता होगी। तुम्हें शायद अपने आप को धोखा दे रखा है उसे झूठी सांसारिक सुरक्षा में कि तुम्हारा पाप छुप गए है नागरिक और गिरजा अधिकारों से, पर जानिए कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पाप से जागरूक है। अपने जीवन को सरल बनाइए ऐसे कार्य करने भी अभी से जो तुम्हारी आत्मा को पाप से सर्व करे और उन परिणामों को रद्द करे जो ये पाप उत्पन्न करते हैं। दूसरों को जो दुख पहुंचाया है उसको दूर करने में अपनी दिलचस्पी दिखाइए। अपने बिशप या स्टेक प्रेसिडेंट से बात कीजिए। तुम्हारे कर्मों की गंभीरता अनुसार तुम्हें नागरिक और गिरजा अनुशासन का सम्मान करना पड़ेगा, पर पूरे पश्चाताप के बाद ही माफी की मेहती राहत, मन की शांति और एक नया जीवन आएगा। और दुरुपयोग हुए पर और उसकी परिवारों को भी राहत देगा। तुम दुख के बोझ से मुक्त हो जाओगे और उन दोष देने वाले विचार की तुम्हें किसी की जीवन में दुख और चिंता लाया से भी तुम्हें सहायता मिलेगी जब तुम इस लत से छुटकारा पाने के चुनाव करोगे। माता पिता उचित कोमल मिजाज से अपने बच्चों को सिखला दुरुपयोग में क्या खतरा हो सकता है और कैसे उसे बचे चेताने की चिन्ह पहचाने, जैसे कि एक बच्चे के चाल में बदलाव शायद समस्या का चिन्ह होगा। तुमको जो इज़राइल में केंद्रित नया आदेश की चाबियां संभाले हो, सावधानी से देखिए कि हर एक व्यक्ति जो इस दुरुपयोग से पीड़ित है उसे उचित मिले। सावधानी से ऐसे व्यक्तियों पर दयानी रखिए जिन्होंने पहले अपराध किया है। ये समझिए कि ये बहुत असंभव है कि एक गलती करने वाला अपने दुर्व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा। वार्ड और स्टेक अधिकारियों की मदद प्राप्त करें अन्य खतरों से बचाने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जिसके साथ दुरुपयोग हुआ है और जो दुरुपयोगी हैं के रूप में अब कार्य करोगे अपने आप को चंगाई दिलाने के लिए यीशु मसीह के प्रस्तुत द्वारा। मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आज्ञाकर्ता यह निश्चय करने की वो तुम्हारी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम है, आमीन।
My dear brothers and sisters,
mere bhaiyo aur behno,
blessed us greatly today. We have already had a significant, historic, and wonderful day of conference. We remind the brethren.
Hum yaad dilate hain bhaiyon ko ki maha purohiti sabha aaj sham 6 baje Mountain Daylight Time Conference Center mein shuru hogi. Rashtriya Gayak Mandali prasharan kal subah 9:30 se 10 माउंटेन डेलाइट टाइम तक रहेगा। इस सम्मेलन के रविवार सुबह का सभा उसके सीधे बाद में शुरू होगा। हम ब्रिगम यंग विश्वविद्यालय के संयुक्त गायक मंडली को धन्यवाद देता हूँ सुंदर संगीत के लिए। एल्डर एल्टन पेरी 12 देवतों को प्रसाद के आज शाम के हमारे अंतिम भाषण करते रहेंगे। उनके विचारण के बाद गायक मंडली फिर गाएगी जीसस सेवियर पायलट मी। गाने की समाप्ति पर एल्डर स्टैनली जी एवर्स जो 70 के हैं अंतिम प्रार्थना करेंगे। एल्डर पेरी।
अपोस्टल पॉल ने घोषणा की, मैं सुसमाचार से नहीं शर्म करता हूँ, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के उद्धार के लिए है। यही निकट संदेश की घोषणा हमारे पूरे समय की प्रचारों द्वारा जाती है जब वो दुनिया के कई भागों में सेवा प्रदान करते हैं। मूल रूप में आनंद जीवन के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार एक पांच अंश निक्ष है। पहला, हम विचार करें कि हमारे साथ क्या हो सकता है अगर हम नुकसान, और फिर हम प्रत्येक अनुष्ठान पर विचार कर सकते हैं। हम आनंद जीवन के बारे में क्या जानते हैं, सीखते हैं कि प्रभु का कार्य, उनकी महिमा हमारी अमर्तव आनंद जीवन है। ये हमें सिखलाता है कि वो अमर्तव और आनंद जीवन अलग और भिन्न है। आनंद जीवन का तोहफा जिसका वादा किया गया है वो शर्तों से पूरी जाएगी। एल्डर ब्रूस आर मैकॉन्की के अनुसार, आनंद जीवन वो नाम नहीं है जिसका संबंध सिर्फ है विश्वासियों जीवन की ना आनंद होने वाली अवस्थाओं। अमरोह का मतलब है पुनर्जीवित, हमेशा के लिए रहना, और ईश्वर की कृपा सभी मानव के अमृतर पाएगा। पर सिर्फ भी समाचार कानून की परिपूर्णता का पालन करते हैं वो आनंद जीवन की उदाकारती होंगे। इसी प्रकार जो आनंद जीवन प्राप्त करते हैं वो उनसे कहते हैं वो ईश्वर का पुत्र है, मसीह के साथ उधारकर्ता, पहलौता और गिरजाघर के सदस्य। वो सभी चीजों पर कभी पाते हैं, उनके पास सभी शक्ति है और पिता के परिपूर्णता प्राप्त करते हैं। हमारे प्रचारकों को कर्तव्य, जैसे प्रीच माय गॉस्पल के पृष्ठ पहला में वर्णन है, कि यीशु मसीह और उनके प्रस्थित पर विश्वास द्वारा उन्हें पुनस्थापित सुसमाचार प्राप्त करने, पश्चाताप करने, बपतिस्मा लेने, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने और अंत तक सहने में मदद करने द्वारा अन्य लोगों के अमृत किया जाएगा मसीह में। कहे कहने पकाने के कई पुस्तकों में ऐसा चित्र है जो पुराना भोजनों के जो मोशन बनते हैं करते हैं अगर हम शक्ति के मार्ग प्रधान को अपनाएंगे जो नुकसान में दिया गया है। ये आवश्यक है कि मन में संपत्ति के साथ जोरो किया जाए। अगर मार्ग प्रदर्शनों को नहीं अपनाया जाए, कोई अनुष्ठ को ना इस्तेमाल किया जाए, ये अशुद्ध खनन हो जिस स्वाद का प्रघाटन वीर ही प्राप्त होता है। पुराना भोजन का चित्र पर भी अभिवारण हो सकती है, फिर कोशिश किया जाए उपत हो जा दोनों स्वाद और सुंदर हो। जब हम आनंद जीवन के बारे में सोचते हैं, क्या चित्र मन में आता है? मैं विश्वास करता हूँ कि अगर हम अपने मन में आनंद जीवन को एक स्पष्ट और सच्चा चित्र उपनत कर सकते हैं, तब हम अलग ढंग से पेश आएंगे। हमें उन कई चीजों को करने के लिए जरूरत नहीं होगी सेना है, भाग मंदिर में जाना, नैत जीवन जीना, अपनी प्रार्थना करना और धर्मशास्त्रों को पढ़ना। हम इस सभी चीजों को और भी करने चाहेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि वो हमें तैयार करेंगे जाने के लिए आनंद जीवन के लिए। क्योंकि प्रचारक मिशनरी इस उपदेश के लिए जरूरी है कि यीशु मसीह और उनके प्रस्थित में विश्वास प्राप्त करने के लिए दूसरे की मदद करते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति को पहले उनके स्वीकार करना चाहिए जिसका सुसमाचार वो है। एक व्यक्ति को उद्धारकर्ता और उनके सिखलाए है ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनके विश्वास करना चाहिए कि प्रायश्चित के द्वारा उनके पास शक्ति आए और प्राप्त है। जब किसी के पास यीशु मसीह के विश्वास है, वह उनके प्रायश्चित और उनके शिक्षकों को स्वीकार करते हैं। उद्धारकर्ता ने चेलों को सिखाया, थेडनिफाय 27 में अध्याय में बताया, बिहोल्ड आई गिव अन टू यू गॉस्पल एंड गॉस्पल आई हैव गिवन अन टू यू दैट आई केम इनटू द वर्ल्ड टू डू माय विल Will of my Father, which I give unto you, that I came into the world to do the will of my Father, because of my Father sent me. और ऐसा हुआ कि जो भी कोई पश्चाताप करेगा और मेरे नाम पर बपतिस्मा लेगा वो परिपूर्ण होगा, और अगर वो अंत तक सहनशील बना रहेगा तब हम दिन में जगत हो जाएंगे, दिन में पिता का समक्ष हो निर्दोष मानोगे। यीशु मसीह और उनके पश्चाताप पर विश्वास हमें उनकी या लेते हैं। दुनिया ये सिखाती है कि देखना कि विश्वास करना है, पर प्रभु ने हमारा विश्वास हमें विश्वास की और नृत्य करते हैं ताकि हम उन्हें हमारे लिए जो पिता की योजना है उसके देख सके।
As Amulek taught in the third chapter of Alma.
Alma के पुस्तक में बताया गया इस कारण केवल उसी के लिए मुक्ति की आनंद योजना है जाती है कि आने पापों की पश्चाताप करने में विश्वास करता है। इस कारण मेरे भाइयों परमेश्वर तुम्हें अपने पापों पर पश्चाताप करने अनुभव करने के प्रेरणा दे, जैसे कि पवित्र नाम की पुकारना आरम्भ करे कि वे तुम पर दया करे। हाँ, दया के लिए तुम उसे पुकारो क्योंकि वो महान है। बपतिस्मा लेने के पवित्र आत्मा प्राप्त करने पहले क्या व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए? मसीह की आवाज ने नेफाइट से घोषणा की कि बलिदान की है। वो बोला, अब मेरे लिए ये निर्दय हृदय और सुरक्षित आत्मा की बलि दिया है, और मेरे पास जो कोई निर्दय हृदय और सुरक्षित आत्मा है उसका मैं अग्नि और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। यही शर्त है कि शर्ता धर्मशास्त्र की वादों के भाग 20 में गई है उसके चांद में, जिसका हम मुड़े वर्दन करते हैं बपतिस्मा की, जो सभी अपने आप को ईश्वर का सम्मान वर्णन करते हैं और बपतिस्मा लेने की इच्छा रखते हैं और निरस हृदय की गवाही देते हैं, वास्तव में अपने सभी पापों को पश्चाताप कर लिए हैं, उन्हें बपतिस्मा द्वारा इस गिरजा में प्राप्त किया जाएगा। धर्मशास्त्रों के ये चंद पुस्तकों के स्वभाव के आवश्यक सभ्यों के सिखलाते हैं जो बपतिस्मा पवित्र आत्मा की प्राप्त की तैयारी के लिए है। प्रथम पश्चाताप में विनम्रता और विचार समतली, बपतिस्मा की तैयारी के लिए और मसीह के नाम लेने के लिए, निराश हृदय और शोकत आत्मा का अपना बलिदान दे और उनकी इच्छा को स्वीकार करे। दूसरा, हम सीखते हैं कि व्यक्तिकों को का पश्चाताप कर लिया है। अंत में हम जानते हैं कि पश्चाताप जो साफ करने के प्रकार है बपतिस्मा से पहले होता है, जो साफ करने का धर्म विधि है ताकि किसी को तैयार किया जो उसकी वो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके। पवित्र आत्मा परमात्मा के दिव्य भाव का तीसरा सदस्य है। पवित्र आत्मा को तोहफा सिर्फ उनके लिए उपलब्ध है जो दुनिया के पापों के पश्चाताप द्वारा पवित्र होते हैं। क्यों हम बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना की जरूरत है? ऑप्शन एफ विटनी ने कहा, बपतिस्मा दो भागियों में है और उसके पास दो लक्ष्य है करने के लिए। ना ही सिर्फ वो साफ करता है, वो आत्मा को उजलाती कहता है, ईश्वर की चीजों आदित वर्तमान भाइयों और प्रकट करता है और सच्चाई के निर्भय गवाही को प्रदान करता है। आत्मा पाप से मुक्त और वो स्थिति में है, पवित्र आत्मा के टिकाऊ प्रभाव का आनंद देता है जो अपवित्र मंदिरों में नहीं रहता। पानी और बपतिस्मा पवित्र और ज्ञान का कर है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस परिपूर्ण करता है। पानी आगे और अग्नि द्वारा बपतिस्मा धर्मविधि को निफाई ने द्वारा को रूप दिया है। पहला क्यों बपतिस्मा द्वारा है? क्योंकि वो ऐसी धर्मविधि है जिसका अंत है ईश्वर और मानव के बीच पवित्र और उसके बंधे में वादे में प्रवेश करना। मानव दुनिया तैयार अपने किया है प्रभु की सेवा करना और उनके आशाओं का पालन करना और वादे करना। प्रभु वादा करते हैं वो हमारे ऊपर अपनी आत्मा को अधिक उंडेलेगा। अपने संतों को दोनों शारीरिक और आत्मिक रूप से ऊपर कर सकेगा और तुम्हारी गिनती पर धाम पूर्ण जीवन पाने वालों में होगी और आनंद जीवन प्रदान करेगा। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना निर्धारित तरीका है। कठिन और मार्ग पर प्रवेश करने के लिए जो आनंद जीवन तक ले जाता है। पॉजल पोल ने अनुसार बपतिस्म का अर्थ ये भी है कि हमारा जल सामत लेना जिस्म से हम मसीह में नया जीवन ले जाए उठाए। बपतिस्मा के धर्मविधि मसीह की मौत और पूरे जीवन का अंत रखती है और हम उन्हें सब मार्ग ताकि उनके साथ रह सकते। इसका मतलब है बपतिस्मा प्रथम बचाने वाली धर्मविधि है और पवित्र आत्मा प्राप्त करने से हम प्रति ये मदद मिलती है सदैव के लिए। हम कैसे सहनशील रहे अंत तक, सहनशील रहने के लिए अंत तक वफादारी की जरूरत है। जैसे पॉल की मामले से जिन्होंने तिमोथी से कहा, मैं अच्छी कुश्ती ले चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैंने विश्वास की है, रखवाली की है। सबस्ट ये कोई आसान कार्य नहीं, ये कठिन शुद्धपूर्ण और अंत में शुद्ध करने वाला है। स्वर्ग के अपने पिता के लिए लौट रहने वाली आनंद आशीर्वादों को प्राप्त करने की है। अंत तक सेवा सेना पर वो कार्य है। प्रथम वो लिए जरूरी है उधारकर्ता की विमचोक शक्ति। हम अपने स्वर्ग पिता के उपस्थिति में लौट में नहीं जा सकते, हम पवित्र नहीं हो सकें और इसलिए कि लौट कर पवित्र करेंगे। दूसरा अंत तक सेना के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमें ढूंढे मार्गदर्शन और पवित्र भाग बनाएगा। तीसरा हमें संतों के समझ का अवश्य भाग होना चाहिए। सुसमाचार में अपनी भाइयों और बहनों की सेवा करना और प्राप्त बपतिस्मा के साथ हम मसीह के शरीर के भाग बन सकते हैं। हमें दूसरे के साथ समुचार बनाना चाहिए। प्रभु में एक आत्मा को लाने की वादा गहरा और आनंद है। इसके अतिरिक्त सुसमाचार रूप से उनकी स्थिति से स्थापित होता है। अंत में हमें अंत तक सेना है के लिए मसीह में विश्वास और कई तरीकों में हम प्रार्थना करते हैं, उपास करते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं। ये अभ्यास हमें शत्रु के जलते कर्म तीर उसके सरक योजना से सुरक्षित करेगा। मैं यीशु मसीह का सुसमाचार से प्यार करता हूं क्योंकि वह दिखलाता है कि मार्ग की जिसका द्वारा हम सुसमाचार का पाल ले सकते हैं, इस आध्यात्मिक महान आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो सिर्फ वही ला सकता है और मरणशालिक जीवन से सभी चुनौतियों के साथ अंत तक संचालित रह सकते। सुसमाचार हमें सिखलाता है कि वो चीजों जो हमें जानने की जरूरत है ताकि पुनर्जीवित और महिमावित परियों की रूप में अपने स्नेह स्वर्ग पिता के साथ रह सकते। हम सभी अपने मानव में आनंद जीवन की दृष्टि को रखिए और आनंद जीवन की नुक्स को अपनाइए कि परिश्रमी रखिए यीशु मसीह का समाचार। हम अंत तक संशीलिक रहें यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
Thank you.
our Father in heaven. We thrill, Father, with the calling and the sustaining of our prophet, President Monson.
President Monson ke bulawa ko dekhkar bahut khushi hai. Our President Eyring aur President Uktovka.
We love them, we sustain them.
हम लोग उससे प्यार करते हैं और उनको सस्टेन करते हैं और अब आगे है कि उसके उन लोगों के साथ सेवा करते हैं पिता हम चमत्कार से देख रहे हैं कि आपका जो ये राज बढ़ रहा है हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको उसके भाग्य बनाए कि हम सेवा कर सकें हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा हमको सिखाए और सहायता करे और हमें समझा कि हम कैसे और आगे बढ़ सके और हमें सहायता करे कि हम अपने कार्य कर सके हम आभारी हैं पवित्र आत्मा के तोहफा के लिए और जो हमारे पास बयान है हम आपसे प्यार करते हैं पिता और हमारा दिल ये चाहता है कि आप हमारी सेवा हमारे राह दिखाएं हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो प्यार उसकी उद्धारकर्ता के लिए और उसकी जो एग्जाम्पल है उसके लिए हमारी सत्य की हम अन्य लोगों की मदद कर सके कि वो सच्चाई जान सके ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके हम आभारी हैं ये जो हमें काउंसल मिलता है इन कॉन्फ्रेंस में ताकि हम अच्छी तरह और अच्छी बन सके और हम कार्य करें जो हमें समझ में आए इस कॉन्फ्रेंस के ये हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from Brigham Young University. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.